ओके, उसके बाद आईवी पल्स स्टीरोइड जो है ना, वो ये जो है ना, सब बैड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ, ठीक है? तो अगर हमसे कोई रेफरेंस पूछेंगे तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू द बैड गाइडलाइंस। तो आईवी पल्स कॉर्टिकल स्टीरोइड का मतलब क्या होता है? बोलस ऑफ अ वेरी हाई डोज ऑफ स्टीरोइड, जिसमें हम आईवी मिथाइलप्रेडनिसोलोन या फिर डेक्सामेथासोन यूज़ करते हैं। मिथाइलप्रेडनिसोलोन इन अ डोज ऑफ 1 ग्राम पर डे फॉर 3 डेज, एंड डेक्सामेथासोन में 100 mg पर डे फॉर 3 डेज, एवरी 3 to 4 वीक्स इज गिवन। सो इट इज़ गिवन वेन वेरी हाई डोज ऑफ अ स्टीरॉयड इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ द डिजीज और इन केस ऑफ द सिवियर रिकैल्सिट्रेंट डिजीज। सो वी आर गोइंग टू गिव इट फॉर 3 डेज, 1 to 3 डेज। इससे ज़्यादा हमने नहीं देना होता, क्योंकि फिर उसके बाद जो है ना, इसके जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं और जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा होने लगते हैं। तो इसलिए रिस्क बेनिफिट रेशियो को रखते हुए वी आर गोइंग टू गिव एनी ड्रग। फिर इसकी जो मॉनिटरिंग है ना, वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि स्टीरॉयड देना। तो पल्स थेरेपी में हमारे पास जो है कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं, जिसमें ड्यूरिंग बिफोर द ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट कुछ इन्वेस्टिगेशंस करके हमने इसको मॉनिटर करना होता है। जिसमें स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ तो उसमें जो है ना, कार्डियोवास्कुलर, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूरोलॉजिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से हमने क्या करना है कि जब हमने स्टीरॉयड पल्स थेरेपी देनी है, वी हैव टू कीप इट इन माइंड कि क्या क्या कर सकता है। इसमें हमारे पास जो है ना, वो हाइपोटेंशन हो सकता है, कार्डिक एरिथमियाज हो सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है और हाइपरकिलीमिया हो सकता है। तो इसलिए जैसे हमने पेशेंट को पल्स स्टीरॉयड देने से पहले ही बेस लाइन इन्वेस्टिगेशंस के अलावा हमने उसमें क्या क्या करना है, ईसीजी, पल्स, बीपी, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और ब्लड शुगर लेवल्स चेक कर लेने हैं। फिर उसके बाद जब पल्स हम दे रहे हैं, तो इन ड्यूरिंग गिवन द पल्स थेरेपी वी आर गोइंग टू चेक द पल्स बीपी एवरी 15 मिनट्स इनिशियली एंड देन एवरी 30 मिनट्स, जब तक कि पल्स कंप्लीट नहीं हो जाता। आफ्टर द पल्स भी दोबारा से फिर हमने क्या करना है कि यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, ईसीजी और ब्लड शुगर रैंडम दोबारा से रिपीट करना है। एंड इन बिटवीन द पल्सेस, यानी कि क्योंकि हम इसको 3 to 4 वीकली इंटरवल पे देते हैं, तो इन इंटरपल्स हमने सीबीसी, एलएफटीज, आरएफटीज, ब्लड शुगर रैंडम, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्सरे और ये हमने रिपीट करना है। तो इसमें हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? नौसिया हो सकता है, फ्लशिंग, मूड चेंजेस एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस, सीजर्स, एरिथमियाज, ऑस्टियोनेक्रोसिस एंड इवन सडन डेथ कैन अकर। तो इसमें हमारे पास एडवांटेजेस क्या होते हैं जिसकी वजह से हम देते हैं स्टीरॉयड? रैपिड कंट्रोल ऑफ द डिजीज़, ओवरऑल रिडक्शन ऑफ द स्टीरॉयड डोज टू बी गिवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिमिशन, और जब स्टीरॉयड डोज डिक्रीज हो जाती है तो उसके साथ एसोसिएटेड साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। तो इसका ये बेनिफिट है, लेकिन इस बेनिफिट को माइंड में रखते हुए हमने स्टीरॉयड्स को देना होता है। अगर हमारे पास उसके डिलीटीरियस इफेक्ट आने लगते हैं तो फिर हम उसको भी स्टॉप कर देते हैं। तो हमारे पास इसकी जो इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है वो हमें पता है कि इसमें हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियो निक्रोसिस हो सकती है अगर हम हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड देते हैं। कितना हाई डोज देंगे? मोर देन 75 mg पर डे फॉर 3 मंथ्स इन अ पेशेंट लेस देन 40 kg। तो या इवन के पेशेंट मोर देन 40 kg में भी अगर हम 3 मंथ्स तक इतना हाई डोज स्टीरॉयड देंगे तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जिसके लिए हमने क्या करना है, डेक्सा स्कैन करना है, वाइटामिन डी लेवल्स करने हैं। तो उसमें इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बोन प्रोटेक्शन और गैस्ट्रो प्रोटेक्शन देंगे। बोन प्रोटेक्शन के लिए वाइटामिन डी और बिस्फोस्फोनेट्स और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, और उसके अलावा हमने पीपीआई और एच2 ब्लॉकर्स एज अ गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट। आई एवेल्युएशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ द कैंडिडल और अदर फंगल इन्फेक्शंस। वी आर गोइंग टू गिव ओरल टॉपिकल ट्रीटमेंट इफ़ देयर इज़ अ फंगल इन्फेक्शन डिटेक्टेड, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड फिजियोथेरेपी एज वेल, क्योंकि ये प्रॉक्सिमल मायोपैथी कराता है।